हक और बातिल में तमीज करने वाली किताब है। आप इसे पढ़ेंगी तो आपको पता चलेगा हक क्या है, आप इसे पढ़ेंगी तो आपको पता चलेगा, इसे समझेंगी तो पता चलेगा कि बातिल क्या है, हक क्या है, ये फर्क करने वाली किताब है बहनों। अल्लाह ताला बता रहे हैं कि अल्लाह ने उतारा ही इसको ताकि वो तमाम लोगों के लिए आगाह करने वाला, तमाम लोगों के लिए, तमाम लोगों के लिए, लिल आलमीन नजीरा, यानी आलमीन के लोगों के लिए, पूरे पूरे, यानी तब आलमीन में तो इंसान जिन्नात सभी होते हैं, सुभान अल्लाह, तमाम की हिदायत के लिए, तमाम को आगाह करने के लिए कुरान का नुजूल हुआ। क्योंकि नुजूल करने वाली जात कोई मामूली बजात नहीं है, वो आसमान और जमीन की सल्तनत का मालिक है और उसकी कोई औलाद नहीं, न उसकी सल्तनत में कोई उसका साझी है, यानी कोई साथी नहीं है उनका, उसका सल्तनत वो अकेला है, वाहद, हर चीज को उसने पैदा किया और ठीक मुकर्रर अंदाजे के मुताबिक उसे ठहरा दिया, सुभान अल्लाह, वो है पाक जात। आगे आयत नंबर 3 से 14 तक अल्लाह ताला कुफार और मुशरिकीन का इनकार और उसके अंजाम के बारे में बता रहे हैं। कुफार और मुशरिकीन कैसे दीन इस्लाम का इनकार करते थे और इस्लाम में रहते हुए भी कैसे शिर्क करते थे, उस ताल्लुक से अल्लाह ताला बता रहे हैं। हम उसकी मुख्तसर सी तफसीर देखेंगे, क्या है कि वो लोग अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह के सिवा जिन लोगों को वो माबूद बनाते हैं तो वो किसी चीज को ना पैदा कर सकते ना खुद पैदा किए जाते हैं, अपनी जान का नफा नुकसान का इख्तियार नहीं रखते और ना मौत और हयात के और ना दोबारा जी उठने के ये मालिक हैं। तो जब ये बात बताई गई काफिरों को तो काफिरों ने कहा ये तो बस ये जो बातें बता रहा है ना नबी, ये तो सिर्फ गढ़ी हुई बातें हैं, नऊज़ बिल्लाह, अगलों के अफसाने। कभी बोलते कि नहीं ये कुरान हक नहीं है, ये गढ़ी हुई बातें हैं, अगलों के अफसाने हैं, और बोलते कि ये कैसा रसूल है, ना हमारे हमारे साथ खाता पीता है, बाजारों में चलता फिरता है, ये कैसा रसूल है, ऐसे ऑब्जेक्शन करते थे नऊज़ बिल्लाह। और कहते थे कि इसके पास फरिश्ता क्यों नहीं आता, कोई खजाना अल्लाह की तरफ से इसके पास कोई खजाना क्यों नहीं आता, या इनके पास कोई बाग होता जिससे खाते पीते हम उसको देखते, और कभी कहते कि ये दीवाने हैं, कभी कहते कि इन पर जादू हो गया है। तो अल्लाह ताला बता रही कि अगर अल्लाह चाहता तो ऐ नबी आपको ऐसे बहुत सारे, एक नहीं, ये तो एक बाग की बता रहे ना बात, ऐसे तो बहुत सारे बाग अल्लाह इनायत फरमा देता, और इससे बेहतर, और इसके नीचे नहरें जारी कर देता और आपके लिए अल्लाह पुख्ता महल बना देता। अल्लाह चाहता तो ये सब करता, लेकिन अल्लाह को मालूम है कब किसको क्या करना है। अल्लाह ताला बता रहे हैं ये उनकी जो बात है वो बात ये लोग दरअसल क्यों अपने मुंह से निकाल रहे हैं, क्योंकि ये कयामत को झुठलाते हैं। और अल्लाह ताला बता रहे हैं कयामत को झुठलाने वालों के लिए हमने भड़कती हुई आग तैयार कर रखी है, जब वो उनसे, जब वो उन्हें दूर से देखेगी तो वो इसका गुस्से से भपरना और दहाड़े मारना सुनेंगे। अल्लाह अकबर। आयत नंबर 12 में देखिए कैसा अल्लाह ताला जहन्नम के हुलनाकी बताते हैं कि जब मुशरिकीन को वो दूर से देखेगी जहन्नम तो गुस्से के मारे भपरना और दहाड़े मारना शुरू कर देगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और जब जहन्नम की किसी तंग जगह में जंजीरों में जकड़े हुए फेंक दिए जाएंगे तो वहां उनके लिए मौत ही मौत पुकारेंगे, उनसे कहा जाएगा कि आज एक मौत को नहीं बल्कि बहुत से अम्बात को पुकारो। अल्लाह अकबर, अल्लाह। आगे बहनों आयत नंबर 15 से 16 में जन्नतियों का जिक्र आया है। अल्लाह ताला फरमाता है कि हाँ वो बचा लिए जाएंगे जो हमेशा की वाली जन्नतों में जाएंगे, अल्लाह ने जिसका वादा किया है, परहेजगारों से वादा किया है, जो उनका बदला है, उनकी लौटने की जगह है, वो जो चाहेंगे उनके लिए वहां मौजूद होगा हमेशा रहने वाले, ये तो आपके रब के जिम्मे वादा है जो काबिल दरख्वास्त है। अल्लाहुम्मा आतिना, अल्लाहुम्मा आतिना, अल्लाहुम्मा आतिना, अल्लाह हम सबको अता करे या रब ये जन्नत। आगे आयत नंबर 16 से यानी 17 से 34 तक कुफार मुशरिकीन के एतराजात के जवाबात हैं और मैदान हश्र का बयान है। यानी अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ये जिस जिसको पूछते ना अल्लाह के सिवा, तो अल्लाह ताला उन सबको जमा करेगा और कहेगा क्या तुम इन बंदों को गुमराह करे या खुद गुमराह थे, तो वो जवाब देंगे कि अल्लाह तू पाक जात है, हमें ये जेबा ना था कि तेरे सिवा औरों को अपना कारसाज बनाते। यानी जिसको ये, जिसकी इबादत कर रहे हैं, यानी आज का मुशरिक, मुशरिक जिसकी इबादत कर रहा है, वो बोलेंगे क़यामत के दिन कि अल्लाह हम जो बाज मुशरिक ऐसे हैं, आज के बाज मुशरिक ऐसे हैं जो, यानी ऐसे ईमान वाले तौहीद परस्त बंदों की इबादत करते हैं जिन्होंने उनको उस इबादत का हुक्म नहीं दिया, जब अल्लाह पूछेगा उनको, जब जमा करेगा कयामत के दिन, तो अल्लाह पूछेगा उनसे कि क्या तुम इनको हुक्म दिए थे कि तू तुम्हारी इबादत करें? तो वो बोलेंगे, अल्लाह तेरी जात पाक है, हम तेरे सिवा अपना कारसाज किसी को ना बनाते थे दुनिया में। बात यह है कि तूने इन्हें और इनके बाप दादाओं को आसूदगी अता की फरमाई, यहाँ तक कि नसीहत बुला बैठे। नहीं, वो बोलेंगे कि अल्लाह ये लोग ना तेरी दी हुई इनायतों पर ऐसे मस्त हो गए थे कि इन्होंने तुझे भुला दिया, इन्होंने तुम्हारी तमाम, अल्लाह आपकी तमाम बातों को इन्होंने झुटला दिया। अब ना तो तुम में अजाबों की फेरने की ताकत है, ना मदद करने की। तुम में से जिस जिसने जुल्म किया उससे बड़ा अजाब का मजा चखाएंगे, अल्लाह ताला बता रहे हैं। तो वो लोग यानी उस दिन बरी उज़्ज़िमा हो जाएंगे, कह देंगे कि अल्लाह हम तो खुद तेरी इबादत करते थे, हम क्यों बुलाएंगे उनको अपनी इबादत की तरफ। वो हट जाएंगे और तमाम सहारे, जो यहाँ बोलता ना बंदा कि तुम फलां के दामन थाम लो, फलां का साथ दे लो, फलां के लिए नजर नियाज करो, फलां के लिए अपने आप को कुर्बान करो, फलां के लिए फलां के लिए, और वहां जाने के बाद वो फलां 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 पूरे हट जाएंगे और कहेंगे आज बादशाहत अल्लाह ही की है, हमने कभी तुमको ये हुक्म नहीं दिया था कि इस तरीके से तमाशे करें हमारे मरने के बाद। अल्लाह ताला बताते हैं कि यानी ये तौहीद की शिर्क की आयतों के यानी इनके शिर्क बताने के बाद वहां यहाँ पे शुरू हो, जिन्हें हमें हमारी मौलाकात की तवा यानी कयामत के मुनकर थे, ये अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ये जिन्हें हमारी मुलाकात की तवक्का नहीं, इन्होंने कहा कि हम पर फरिश्ते। ये देखिए बहनों, यहाँ से सूरतुल फुरकान ही कंटिन्यू है लेकिन 19वां पारा शुरू हो रहा है। वकाल लजीना ला यर्जुन लिकाअना लौला अंजिला अलैना मलाइका, 19वां पारा शुरू हो रहा है, वहां पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि और जिन्हें हमारी मुलाकात की तवक्का नहीं, इन्होंने कहा कि हम पर फरिश्ते क्यों नहीं उतारे जाते, या हम अपनी आंखों से अपने रब को देख लेते। नऊज़ बिल्लाह, इस तरीके की बहानेबाजियां करते थे जिनको इस्लाम पे चलना नहीं होता। तो अल्लाह ताला बता रहे हैं यकीनन इन लोगों ने अपने आप को बहुत ही बड़ा समझ रखा, बहुत सरकश हो गए हैं। जिस दिन वो फरिश्तों को देख लेंगे उस दिन गुनाहगारों को कोई खुशी ना होगी, और कहेंगे क्या कहेंगे वो लोग, ये महरूम ही महरूम हम किए गए। यानी उनके जो जो आमाल थे ना, अल्लाह ताला उनको यानी अल्लाह ताला बता रहे हैं कि हम उनकी तरफ बढ़कर उन्हें परागंदा जर्रों की तरह कर देंगे उन आमाल। उस दिन अलबत्ता बचा दिए जाएंगे कौन, जन्नती, जन्नतियों का ठिकाना सुभान अल्लाह बेहतर होगा और बड़ी बेहतरीन ख्वाबगाह होगी। खयामत की मंजर कशी करके कहते हैं अल्लाह सुभान तआला, जिस दिन आसमान बादलों के साथ फट जाएगा। अल्लाहु अकबर, बादल फटने का नतीजा मालूम है ना कैसा होता, बादल जब फट फट पड़ते हैं, बादल जब फट पड़ते हैं तो बेदरीख तूफान आते हैं। अल्लाह ताला बता रहे हैं कि जिस दिन आसमान भी फटेगा, बादलों के समेत फटेगा और फरिश्ते लगातार उतारे जाएंगे, उस दिन सही तौर पर मुल्क सिर्फ रहमान का ही होगा, वो दिन काफिरों पर बड़ा भारी होगा। और उस दिन जालिम शख्स अपने हाथों को चबा चबा कर कहेगा काश कि मैंने रसूल की राह अख्तियार कर ली होती, हाय अफसोस काश कि मैंने फलां को दोस्त न बनाया होता। क्या कहेगा काफिर, आयत नंबर 28 है, देखिए 28 आयत नंबर 28 है, या वही लता लैतनी लम अत्तखिज फलानन खलीला। क्या कहेगा वो, ऐ काश कि मैं फलां को दोस्त न बनाया। यानी दोस्ती फसाद की जड़ होती है, जब गुनाह होते ना, दोस्त किया तो हम भी किए, हमारे दोस्तों सब करते हम भी करेंगे, हमारे दोस्तों ने ये बात की तजवीज पेश की लिहाजा हम भी करेंगे, हमारे फ्रेंड सर्कल में अगर हम ये हदीस पे अमल करेंगे तो लोग मजाक उड़ाएंगे, लिहाजा इसको छोड़ दो। नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, इस तरीके से लोग बहकते हैं दुनिया में और वहां जाकर अफसोस करेंगे काश के मैं इसको दोस्त ना बनाया होता, फलां को दोस्त ना बनाया होता। आयत नंबर 28 से नोट कर लीजिए इसे और बताएं अपने दोस्त अहबाब को और अपने रिश्तेदारों को, अपने हर एक को ये बात आयत खोल खोल कर बताएं कि देखो बहनों, दोस्ती वही अपनाना है जो हमें जन्नत में ले जाने वाली हो। दोस्त हम उसको बनाना है जिससे बात करें आप तो आपके इल्म में इजाफा हो, उससे मुलाकात करें तो आपको आखिरत की याद आए, ऐसे दोस्त बनाना है। क्योंकि खुदा ना खास्ता बुरी सोहबत रखेंगे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे हदीस बताई ना कि बड़ी मिसाल के साथ वाजह किया हदीस में कि बुरी सोहबत की मिसाल कैसी होती है और नेक सोहबत की मिसाल। یہاں پر اللہ تعالیٰ دو یعنی بتا رہے ہیں کہ جو دوست اچھا نہیں بنایا تھا دنیا میں تو وہ وہاں افسوس کرے گا, کاش کہ میں فلاں فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا, اس نے تو مجھے اس کے بعد گمراہی کر دیا کہ نصیحت میرے پاس آ پہنچی تھی, مجھے معلوم تھا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, لیکن میں دوستوں میں آ کے بھول گیا اللہ کی نصیحت کو. وہ کہے گا اس طریقے سے, اور شیطان تو انسان کو دغا دینے والا ہی ہے, وہ تو کسی بھی طریقے سے دلائے گا دغا, اولاد کے ذریعے سے, مال کے ذریعے سے, دوست احباب کے ذریعے سے. اور بندہ دھوکہ کھا گیا اور اس کے دغا بازی میں آ گیا تو پھر محض ہاتھ چبانے کے افسوس سے اور کوئی باقی نہیں رہی بات. اور حتیٰ کہ یعنی نہ خود وہ افسوس کرے گا بلکہ رسول کہیں گے. یہ بھی آیت نوٹ کر لیجیے, آیت نمبر 30 آیت نمبر 30 یاد کر, اس کو بھی ٹک کر لیجیے گا. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ رسول اس دن شکایت کریں گے رب سے, کس کی؟ امتیوں کی. اللہ اکبر. آج بڑے زعم میں ہے نا, کہ کئی لوگ ایسے زعم میں ہیں, جھوٹا دھوکا ہے یہ ان کے ساتھ. کیا کہتے ہیں, کالی کملی والا آئے گا اور ہمیں بچا لے گا. یہاں کچھ بھی اعمال کرو, کسی کی بھی بے حرمتی کر دو, کسی کا بھی کچھ بھی مار کھا لو, فلاں کر لو, کالی کملی والے آئے گا, مجھے بچا لے گا. حرام سوچ, حرام ہے یہ. یہ مت سوچیں جو قرآن کو پڑھے گا نہیں, اس کا ترجمہ نہیں پڑھے گا, اس کو سمجھے گا نہیں, اس کو نہیں بچائیں گے اللہ کے رسول, بلکہ اس کی مخالفت کریں گے. آیت نمبر 30 میں ہے دیکھیے, اور وقال الرسول, اور رسول کہیں گے, یا ربی, اے میرے رب, انا قومی, بے شک میری قوم, اتخذوا هذا القرآن مہجورا. مہجورا ہجرت سمجھتے نا, دور چلے جانا, چھوڑ چھاڑ کے. ہجرت کس کو بولتے, چھوڑ چھاڑ کے چلے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ یہ یعنی رسول شکایت کریں گے, کہیں گے, اے میرے پروردگار, میں میری قوم, انہوں نے اس قرآن سے ہجرت کر لی تھی. یعنی قرآن ایک طرف, ان کی عمل ایک طرف, قرآن کی باتیں ایک طرف, ان کے اعمال ایک طرف, قرآن کے احکامات ایک طرف, ان کی منوانیاں ایک طرف, گویا انہوں نے قرآن سے ہجرت کر لی. ہجرت یعنی چھوڑ چھاڑ کے ہٹ گئے. تو نعوذ باللہ, رسول شکایت کریں گے, بے شک یہ میری امت, اس نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا, ایسا چھوڑا جیسے کہ مہجورہ کا لفظ استعمال, مہجورہ کہتے ہیں ہجرت سے, یعنی دور دور چلے گیا قرآن سے. سبحان اللہ, آج کتنی ایسی زندگیاں ہیں بہنوں جو قرآن سے ہم دور ہو گئی ہیں. اللہم احفظنا, اللہ ہماری بہنوں کو اس آگ سے بچائے جس کا اینتھن انسان اور پتھر بننے والے ہیں. وہ آگ دہاڑے مارے گی بہنوں, وہاں کوئی ہمیں بچانے والا نہیں ہوگا. تمام بہنیں ہم دعا بھی کریں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے والا بنائے, اس پر عمل کرنے والا بنائے, کہیں خدا نخواستہ رسول ہم کو نہ پکڑوا دے یہ کہہ کر کہ دیکھو اللہ, یہ میرے امتی, اس نے قرآن کو چھوڑا تھا, آج پکڑ اس کو اور ڈال دے جہنم میں. آج یہ کیسے دھوکے میں مبتلا ہیں ہماری بہنیں جو یہ کہتی ہیں کہ ہمیں رسول بچا لیں گے. نہیں بہنوں, یہ آیت پڑھیے, آیت نمبر 30, سب کو سنائیے بہنوں, بتائیے گا آیت نمبر 30 میں فرقان کی. اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ رسول خود شکایت کریں گے, اللہ, اے پروردگار, یہ قوم نے قرآن کو تیری دور چھوڑ دیا تھا. آگے ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ, اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بعض گناہگاروں کو بنا دیا. یہ نبی کے دشمن ہیں جو قرآن پر عمل نہیں کرتے, بظاہر دوستی کے الفاظ بھی کہیں لیکن دشمن ہیں جو قرآن پر عمل نہیں کرتے. اور تیرا ہی رب ہدایت کرنے والا اور مدد کرنے والا کافی ہے. اور کافروں نے کہا کہ اس پر قرآن سارے کہتے نہیں, کافر ہے جو بہانے بناتا ہے. مسلمان ہیں ہم تو ہمیں کوئی بہانہ نہیں ہے قرآن پہ عمل کرنے کے لیے. اگر بہانے بنائیں گے تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جو لوگ اپنے منہ کے بل جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے, ان کا جواب یہ ہوگا بہانوں کا کہ ان کو منہ کے بل جہنم میں جمع کیا جائے گا, وہی بدترین مکان اور گمراہ تر راستے والے کا وہ ٹھکانہ ہے, نعوذ باللہ من ذلک. آگے آیت نمبر 34 سے 44 تک قوموں کی مثالیں دے کر مشرکین کو تنبیہ کی گئی کہ کیسے قوموں کو انہوں نے جھٹلایا نا, موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو, موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں, فرعون کے بارے میں بتایا گیا کیسے فرعونیوں نے ان کو جھٹلایا تھا موسیٰ علیہ السلام کو, تو کیا حالت ان کی بھی تھی. اور ایک شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ مشرک میں سے ایک وہ مشرک تھے جو قوم, الگ الگ قوموں, یہاں پر ایک قوم کے بارے میں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ایک مشرکوں کے بارے میں, سوری قوم نے مشرک کے بارے میں, انڈیویجول آیت تھے یہ, کون سی آیت نمبر 43, اس کو بھی نوٹ کریے گا. کیا فرماتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ, کیا آپ نے اسے بھی دیکھا جو اپنے خواہش نفس کو اپنا معبود بنا بیٹھا, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या किया उसने? ख्वाहिश नफ्स को अपना माबूद बना बैठा। क्या आप इसके जिम्मेदार हो सकते हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछ रहे हैं अल्लाह ताला कि आप उसके जिम्मेदार नहीं बन सकते जो अपने ख्वाहिश नफ्स को माबूद बना बैठा। तो ये मुशरिक नऊज़ु बिल्लाह आम मुसलमानों में से निकल जाएगा ये मुशरिक। देखिए ये भी शिर्क है। क्या? ख्वाहिश नफ्स को माबूद बना लेना। बोलते नहीं दिल बोला वो कर रहे हैं, दिल ऐसा बोला ये कर रहे हैं, दिल में आया कर लिए। दिल को यानी ख्वाहिश नफ्स, अंदर ख्वाहिश होती ना नफ्स की, तो उसकी फर्माबरदारी ऐसे करने लगते जैसा कि अल्लाह की फर्माबरदारी करनी चाहिए। नऊज़ु बिल्लाह ख्वाहिश नफ्स को अपना माबूद बना लेते, उसकी गुलाम बन जाते, नफ्स के गुलाम। तो नफ्स के गुलाम नहीं बनना है, अल्लाह के गुलाम बनना है, अल्लाह के बंदे बनना है, नफ्स के बंदे नहीं बनना है। तो आइए बहनों हम अपने ईमान को चेक करके देखेंगे कहीं खुदा ना खास्ता हम में कोई ऐसा अमल तो नहीं हो रहा है कि हम नफ्स के गुलाम बने बैठे हैं। अल्लाह का हुक्म एक तरफ हम रख दिए और अपने नफ्स की सुन रहे हैं और उसकी इबादत में लगे हैं। नऊज़ु बिल्लाह। तो अल्लाह ताला बता रहे हैं क्या तूने उस शख्स को देखा जो अपने ख्वाहिश नफ्स को अपना माबूद बना लेता है? इसीलिए तो अल्लामा इकबाल ने क्या बेहतरीन शेर कहा ना कि तू बचा बचा के न रख इसे तेरा आईना है वो आईना, जो शिकस्ता हो तो है अजीज तर निगाह आईना साज में। यानी अपने ख्वाहिश नफ्स को बचा बचा के नहीं रखना, उसको मार के तोड़ दो बोल रहे हैं। उस आईने को तोड़ देंगे तो जो शिकस्ता हो तो है अजीज तर निगाह आईना साज में। तो अल्लाह के यहाँ अजीज बनेंगे, अल्लाह के यहाँ अहमियत वाले बनेंगे जब हम इस ख्वाहिश नफ्स को मारेंगे। आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमा रही कि क्या आप इस ख्याल में हैं कि इनमें से अक्सर सुनते या समझते नहीं, वो तो चौपाइयों जैसे है, बता रहे हैं अल्लाह ताला चौपाई या उससे भी ज्यादा बहके हुए हैं, जानवर से भी ज्यादा बहके हुए हैं, बोल रहे हैं नऊज़ु बिल्लाह। आगे अल्लाह ताला 45 आयत से 62 तक तौहीद के दलायल बता रहे हैं कि देखो कैसे अल्लाह ताला बादलों को भेजता है और बारान रहमत से पहले वो खुशखबरियां देने वाली हवाओं को भेजता है। और अल्लाह ताला बता रहे हैं कि नींद को उसने राहत का सबब बनाया, दिन को उठ खड़े होने का वक्त बनाया और मुर्दा शहर को जिंदा कर अल्लाह ताला बारिश बरसाता है और मुर्दा शहर को जिंदा कर देता है। अल्लाह ताला अपनी तौहीद बयान करते हुए ये पूरी बातें बताते हुए आगे यानी मक्की दौर में जब जिहाद फर्ज नहीं हुआ था उस वक्त की एक आयत है। यहाँ पे अल्लाह ताला इरशाद फरमा रही कि आप इनकी ना सुने, तौहीद आपके सामने है, आप इनकी ना सुने, कुरान के जरिए से इन पर पूरी ताकत से जिहाद करें। आयत नंबर 52 इसमें अल्लाह ताला बताए कि कुरान के जरिए से जिहादन कबीरा यानी बड़े बड़ा जिहाद करो इनके साथ कुरान के जरिए से। ये उस वक्त नाजिल हुई बहनों आयत जब यानी मक्की दौर था, मक्की दौर था, जिहाद अभी फर्ज नहीं हुआ था, जब बोले कि तब तक तो कुरान से तुम इनके साथ जिहाद करो यानी इनको समझाओ कुरान के बारे में, कुरान की दलीलें। ये लोग जो ऑब्जेक्शंस कर रहे हैं ना उसका जवाब कुरान से दो। बहरहाल आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वही है जिसने दो समंदर आपस में मिला रखे हैं। ये भी बड़ी बड़ी तौहीद की अलामत, अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह ताला के एक होने की, उसी के सल्तनत होने की एक बहुत जबरदस्त निशानी है जो आप में से तकरीबन देखे होंगे। ये अक्सर व्हाट्सएप पे ये वीडियो वायरल हो रहा था कि दो समंदर जो आपस में मिलते नहीं है, दोनों के रंग अलग अलग हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला बता रही, अल्लाह ने उसका जिक्र किया। हाँ, वो समंदरों का जिक्र हुआ और अल्लाह ताला बता रहे हैं कि दो समंदर आपस में अल्लाह ने मिला रखे हैं, एक का मीठा और मजेदार पानी है और दूसरे का खारा और कड़वा। अल्लाह अकबर। हम जो देखे ना अक्सर बहनों ने वीडियो देखा होगा वो कि कैसे दो रंग है, एक ही समंदर समझ में आ रहा है आपको लेकिन बीच में से यानी इसका रंग एकदम अलग है, इसका रंग एकदम अलग है। तो अल्लाह ताला बता रही कि ये जो आपस में समंदर मिलते हुए भी नहीं मिलते, उनके दरमियान एक हिजाब है, मजबूत ओट अल्लाह ने कर दी है दोनों के दरमियान। सुभान अल्लाह व तबारक अल्लाह अहसनुल खालिकीन। बड़ा ही बाबरकत है अल्लाह जिसने बेहतरीन तख्लीक फरमाई। कैसी बेहतरीन तख्लीक के नजरों में तो दिख रहा है कि दो समंदर एक जगह मिले हुए हैं लेकिन अलानिया नजर आता है कि एक का रंग अलग है, एक का रंग अलग है, बीच में एक बारीक सी लकीर नजर आती बस। अब वो जो ओट है वो अल्लाह ही बेहतर जाने, अल्लाह ताला बता रहा है कि तुम इधर का पानी चखो तो कड़वा और खारा, एक तरफ का मीठा और मजेदार। अल्लाह की शान, अल्लाह की शान, अल्लाह ताला बताता है अपनी शान ताकि लोग उसकी तरफ पलटें। مگر بھی لوگ نہیں پلٹتے تو اللہ تعالیٰ بتا رہا کہہ دیجئے میں قرآن کے پہنچانے پر تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا. اب جو اللہ رحمان کے آگے سجدہ کرے گا تو پھر وہی کامیاب, جو جھک جائے گا اللہ کے سامنے تو وہی کامیاب ہے. جب کفار سے کہا جاتا کہ جھکو تو وہ بولتے تھے نہیں, اور ان کا کفر بڑھ جاتا. تو دیکھیے یہ کفار کی روش ہے کہ جب اللہ کی بات کی طرف بلایا جاتا ہے تو اور ضد میں آ کے نہیں کرتے بلکہ اور اپوزٹ جو کرتے ہیں وہ کفار کی روش ہے, کفار کی. ایمان والا ایسا نہیں ہوتا, ایمان والا نرم ہوتا ہے, وہ اللہ کی بات مان لیتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 63 سے آخر تک, یعنی سورہ آخر تک بہت پیاری آیتیں, بہت پیاری آیتیں آپ نوٹ کریے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس میں عباد الرحمن کے بارے میں بتا رہا ہے. رحمان کے بندے کون ہیں؟ جو رحمان کے لیے جھک پڑتے ہیں. رحمان کے لیے جو جھک پڑتے ہیں وہ بندوں کی صفات یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے. نوٹ کر لیجئے وہ صفات کو. میں کیوں کری بہت پیاری آیتیں؟ کیونکہ یہ آیتیں ہمارے لیے ہیں خاص. انشاءاللہ ہم عمل کریں گے, رحمان کے بندے بنیں گی انشاءاللہ, تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس دے گا انشاءاللہ. کیا بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ عباد الرحمن الذین یمشوا علی الارض. کیسے ہوتے عباد الرحمن؟ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو زمین پر فروتنی کے ساتھ, یعنی عاجزی و انکساری کے ساتھ چلتے ہیں, اور جب بے علم لوگ ان سے باتیں کرتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں سلام. یعنی جو بے علم, یعنی جو جاہل ہوتا نا, جاہل ہوتا اور جھگڑنے لگتا ان سے, تو یہ تو نرم چال والے ہوتے ہیں, کیا کہتے ہیں جھگڑنے لگتا ہے تو السلام علیکم, آپ کا راستہ آپ, میرا راستہ میں, ٹھیک ہے آپ کو نہیں ماننا ہے آپ کی مرضی ہے, چلیے السلام علیکم. کیا ہوتا ہے ان کا ان کی بات؟ سلام. جب جاہلوں سے ان کے سابقہ پڑتا ہے تو کہتے ہیں سلام, سلام ہو آپ پر. اور جو اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کرتے ہوئے راتیں گزارتے ہیں, سبحان اللہ. عباد الرحمن کی صفت بیان کی گئی کہ وہ اللہ کے سامنے راتوں کو سجدے اور قیام کرتے ہیں, اور جو دعا کرتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے دوزخ کا عذاب ہٹا لے, پرے کر دور رکھ, ہم سے دوزخ کا عذاب دور رکھ اللہ, کیونکہ اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے. اللہ اکبر, ان عذابہا کان غراما, ربنا صرف عنا عذاب جہنم, اے اللہ ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دے, ان عذابہا کان غراما. یہ آیت نوٹ کریے بہنوں, بہت اہم ہے, یہ دعائیں کریں, بہت اہم دعا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں بے شک وہ ٹھہرنے کی اور بدترین جگہ ہے. اور عباد الرحمن وہ ہوتے ہیں جو خرچ کرتے وقت نہ اسراف کرتے ہیں نہ بخیلی, یعنی میانہ روی اختیار کرنے والے ہوتے ہیں, نہ ایسا اسراف کرتے ہیں کہ کنگال ہو جائیں, نہ بخیلی کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو بخیلوں میں شمار کر دیں, نعوذ باللہ, نہیں, بلکہ معتدل طریقے پر چلتے ہیں, اور اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہیں بناتے, اور کسی ایسے شخص کو قتل کرنا اللہ نے منع کریا اس کو قتل نہیں کرتے, بجز حق کے قتل کریں گے, نہ وہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں, وہ زنا بھی نہیں کرتے عباد الرحمن. اور جو کوئی یہ کام اپنے اوپر سخت وبال لائے گا, جو یہ کام کرے گا وہ اپنے اوپر سخت وبال لائے گا, اسے قیامت کے دن دوہرا عذاب دیا جائے گا, اور وہ ذلت و خواری کے ساتھ ہمیشہ اس میں رہے گا, سوائے ان کے جو توبہ کر لیں اور ایمان لائیں اور نیک عمل کریں. ایسے لوگوں کی گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دیتا ہے, سبحان اللہ. خوشخبری ہے بہنوں, خوشخبری, جو ایمان لا کر عمل صالح کرتا ہے بندہ, تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اس بندے کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا, سبحان اللہ. کتنا بڑا گفٹ ہے ہمارے لیے کہ جب ہم توبہ کرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ پچھلے گناہوں کو معاف کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کرتے ہیں, بدل دیتے ہیں اس کو نیکیوں سے. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو شخص توبہ کرے اور نیک عمل کرے گا تو حقیقتاً وہ سچا رجوع کرنے والا ہے. یعنی خالص توبہ کرنا چاہیے بندوں کو. عباد الرحمن وہ ہوتے ہیں جو بار بار توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹتے ہیں. اور جو لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے, عباد الرحمن وہ ہوتے ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے, جب کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہوتا ہے تو شرافت سے گزر جاتے ہیں, سبحان اللہ. اور ایک صفت, لغویات میں وہ نہیں پڑتے, اور جب انہیں ان کے رب کے کلام کی آیتیں سنائی جاتی ہے تو وہ اندھے بہرے ہو کر ان پر نہیں گرتے بلکہ دعا کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں, یعنی اندھے بہرے نہیں ہو جاتے اس سے, اللہ کی باتوں کو سنتے سمجھتے اپنے اندر لیتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں. اے اللہ ہم, اے پروردگار, یہ بھی دعا نوٹ کر لیجئے, ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. کیا دعا کرتے ہیں؟ रहमान के बंदे इबादुर रहमान क्या दुआ करते हैं, ऐ परवरदिगार तू हमें और हमारी बीवियों को यानी हमारी जोड़ों को और औलाद से, हमारी औलाद से और हमारी अजवाज से हमको आंखों की ठंडी अता फरमा, आमीन या रब। लोगों से शिकायतें करने से नहीं होता, औलाद नाफरमान हो गई, शोहर मेरे अब नहीं सुन रहे, शोहर का जो है ना मतलब मेरे साथ फला सुलूक कर, दुआ मांगे, दुआ दुआएं मांगे, क्या है दुआ, रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयनिन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा, ये दुआ करिए आयत नंबर 74 में। दुआ करना कि अल्लाह हमें हमारी औलाद और हमारे जौज को आंखों की ठंडक बना हमारे लिए और हमारे हमें परहेजगारों का पेशवा बना, यही वो लोग हैं जिन्हें इनके सब्र के बदले जन्नत और बालाखाने दिए जाएंगे जहां उन्हें दुआ सलाम पहुंचाया जाएगा, सुभान अल्लाह, इसमें वो हमेशा रहेंगे बहुत ही ऊंची जगह उमदा मुकाम। आगे फरमाते हैं अल्लाह सुब्हानहू कह दीजिए, अगर तुम्हारी दुआ वो इल्तिजा ना होती तो मेरा रब तुम्हारा मुत्तक परवाना करता, तुम तो झुटला, अभी झुटलाने वालों के बारे में कि जो झुटलाते हैं तो अल्लाह ताला बता रहे हैं अल्लाह का फैसला नहीं होता, अल्लाह ताला ने ये यानी तो अगर तुम्हारी दुआ वो इल्तिजा ना होती तो मेरा रब तुम्हारा मुत्तक परवाना करता, तुम तो झुटला चुके, लिहाजा अब अनकरीब उसकी सजा तुम्हें चिमटने वाली है। ये हुआ सूरतुल फुरकान